Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जितना पुराना इतिहास इंसान का है उतना ही पुराना युद्ध और शांति का भी है। जब से इंसान है युद्ध और शांति भी तभी से है। दुनिया में अलग अलग वजहों से जंगें लड़ी जाती रही हैं। धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। क्रूसेड पॉडकास्ट का ये 12वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि शांति समझौते के मुताबिक नील नदी में फंसे क्रूसेडर दमियादा शहर को आजाद करने और 8 साल के लिए शांति स्थापित करने पर राजी हो गए। ये भी तय हुआ कि दोनों पक्ष कैदियों का आदान प्रदान करेंगे और मुसलमान क्रूसेडरों को ईसा मसीह का क्रॉस लौटा देंगे। इन युद्धों में ईसाई कैदियों के साथ मुसलमानों के व्यवहार ने पश्चिमी इतिहासकारों को हैरान कर दिया। सुल्तान अल कामिल की दया और क्षमा से मौत की सजा से बचने वाले एक क्रूसेडर ने लिखा है, जिन मिस्रियों के रिश्तेदारों को हमने अतीत में मार डाला था और जिनकी संपत्ति लूटकर उन्हें उनके घरों से निकाल दिया था, अब जब हम उनके हाथों कैदी बन गए थे और हमारी जान उनके हाथों में थी, उन्होंने हमें खाना दिया और हमें जीवन दिया। शांति समझौते पर अमल को सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्ष दूसरे पक्ष से विश्वसनीय बंधक रखने पर सहमत हुए। इसलिए काउंट ब्रिग्नोल और सैन्य अधिकारियों और 18 काउंटों और बिशपों को मुसलमानों ने बंधक बना लिया और बदले में अल कामिल के एक बेटे, उसके एक भाई और अल कामिल की सेना के कई कमांडरों को क्रूसेडरों ने बंधक बना लिया। दमियादा शहर की आज़ादी के बाद उनका आदान प्रदान किया गया और मुसलमानों ने क्रूसेडर कैदियों और बंधकों को पूरी सुरक्षा के साथ रिहा कर दिया। इस्लामी जगत और ईसाई दुनिया में इसका 2 तरह से प्रभाव पड़ा। इस्लामी दुनिया में लोग इस परिणाम को सुनकर खुश हुए और जश्न मनाया और आनंदित हुए। उन्होंने इस जीत के लिए कई कविताएं रची थी जिन्हें उन्होंने उत्सव के दौरान गाया। वे गुनगुनाते थे, अका का फिरौन मिस्र की भूमि को नष्ट करने आया था, लेकिन मूसा अपनी लाठी के साथ हमारी सहायता के लिए आया और उन्हें एक के बाद एक समुद्र में डुबो दिया। दूसरी ओर यूरोप में शक्तिशाली लोग इस परिणाम से बेहद परेशान थे। चर्च और पोप ने हार के लिए जर्मन सम्राट फ्रेडरिक को दोषी ठहराया। उनका मानना था कि अगर फ्रेडरिक ने इस अवसर को गंवाया नहीं होता और अपनी सेना मिस्र में लड़ रहे धर्म योद्धाओं की मदद के लिए भेजी होती तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। कई अन्य लोगों का मानना था कि धर्म योद्धाओं की हार का कारण युद्ध की कमान में पोप के दूत का हस्तक्षेप था। उस समय के एक ईसाई कवि ने क्रूसेडर्स की हार के कारण के बारे में लिखा, हमने अपनी अज्ञानता और पाप के कारण ये शहर खो दिया। उन्होंने ये नज्म इसलिए लिखी क्योंकि उनका मानना था कि पादरियों द्वारा नाइट्स का नेतृत्व निश्चित रूप से चर्च के नियमों के खिलाफ था। पादरियों को बाइबल की तिलावत करके और जोश भरने वाले उपदेश सुनाकर युद्ध का मैदान योद्धाओं के लिए छोड़ देना चाहिए था। यूरोपीय लोगों को इस बात का बहुत अफसोस था कि पोप के दूत ने धर्मयोद्धा कमांडरों को अल कामिल के शांति प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि स्वयं पोप ने भी अपने दूत को इस हार के लिए निर्दोष नहीं माना। इस बीच क्रूसेड्स का छठा चरण पिछली लड़ाइयों से बहुत अलग था। मुसलमानों और ईसाइयों के बीच लंबे युद्ध के कारण ईसाई इस्लाम और मुसलमानों की सच्चाई से ज्यादा परिचित होते गए। अधिक जानकारी ने मुसलमानों के प्रति उनमें नरमी पैदा की और संयम को बढ़ाया। हम आगे इस बारे में बात करेंगे कि यूरोपीय ईसाइयों ने मुसलमानों से क्या सीखा लेकिन संक्षेप में ये कहना जरूरी है कि इन युद्धों में ईसाइयों ने मुसलमानों के बारे में जो जानकारी हासिल की उससे इस्लाम और मुसलमानों के बारे में उनकी प्रारंभिक धारणा कुछ हद तक बदल गई। वो पहले मुसलमानों को बर्बर और असभ्य मानते थे और इस्लाम के बारे में गलत धारणा रखते थे। इसलिए जब काफिर शब्द का प्रयोग होता था तो सबसे पहले मुसलमान उनके मन में आते थे। लेकिन मुसलमानों के साथ कई दशकों के संघर्ष, पड़ोस और सह अस्तित्व ने उन्हें कुछ मामलों में मुसलमानों को अपने से ज़्यादा सभ्य और सुसंस्कृत पाया। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों के ज्ञान, कला और संस्कृति के स्तर को समझा। ये वो समय था जब क्रूसेडर और यूरोपीय ईसाई अपने समाज की गलत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना के कारण अंधविश्वासों और गलत धारणाओं में फंसे हुए थे। उन्होंने देखा कि युद्धों में अपनी स्पष्ट जीत के बावजूद मुसलमानों ने मानवीय और सौम्य व्यवहार दिखाया। उन्होंने मुस्लिम सेना के कमांडरों, खासकर नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी की वीरता देखी। स्पष्ट है कि इस्लामी जगत और मुसलमानों के बारे में इतनी जानकारी उनके साथ उचित व्यवहार के लिए कारगर हो सकती थी। ईसाइयों की नज़र में ये बदलाव तब और स्पष्ट हुआ जब वो मंगोलों से परिचित हुए। मंगोलों की क्रूरता, निर्दयता और बर्बरता ने कि जो दिन प्रतिदिन उनकी सीमाओं के निकट पहुंचती जा रही थी, मुसलमानों की स्थिति को उनकी दृष्टि में और अधिक सम्मानजनक और प्रतिष्ठित बना दिया। इसलिए जब यूरोपियों को मंगोलों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई तो वो डरने लगे और चिंतित हो गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि मंगोलों से गंभीर खतरा है और वो उन्हें भी आग की लपटों की तरह अपनी चपेट में ले सकता है। इसलिए उन्होंने मंगोलों का मुकाबला करने वाले मुसलमानों के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया। उन्हें एहसास हुआ कि भूमध्य सागरीय तट और एशिया माइनर के मुसलमान मंगोलों के उग्र और बेकाबू आक्रमण के खिलाफ एक रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ताकि उन्हें ईसाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके। खतरे की यह भावना तब और बढ़ गई जब मंगोल सेनाओं ने रूस और पूर्वी यूरोप पर कब्जा कर लिया। ग्रेट मंगोल खान की मौत ही मध्य यूरोप पर उनके व्यापक आक्रमण को रोक सकी। हलागू खान के हाथों बगदाद के पतन और अंतिम अब्बासी खलीफा की मौत के बाद यूरोप में इस्लाम के और अधिक प्रसार को लेकर यूरोपीय चर्च की चिंता कम हो गई। उनका मानना था कि इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक राजनीतिक केंद्र के नष्ट होने से इस्लामी दुनिया कमजोर और कहीं अधिक असुरक्षित हो जाएगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि मिस्र में क्रूसेडरों की भारी हार और मुसलमानों द्वारा उनके प्रति अच्छे व्यवहार के कारण वो लंबे समय तक धर्म युद्ध से दूर रहेंगे, लेकिन यूरोप में हुए परिवर्तनों के कारण एक अप्रत्याशित परिणाम सामने आया। ऐसा कहा जाता है कि यूरोपीय लोग मिस्र में अपनी हार का मुख्य कारण सैन्य मामलों में पोप के दूत का सीधा हस्तक्षेप मानते थे। इसलिए यूरोपीय लोगों का चर्च पर बहुत दबाव था। यूरोपीय मंगोल आक्रमण और उनकी प्रगति से अवगत थे और जानते थे कि बगदाद में केंद्रीय खिलाफत को मंगोलों से गंभीर खतरा है। इसलिए खिलाफत अय्यूबियों की कोई मदद नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर अय्यूब बंधु अशरफ, अलकामिल और अलमुअज्जम पांचवें धर्मयुद्ध में एकजुटता के बावजूद अब धीरे धीरे एक दूसरे से असहमत होने लगे। मिस्र के शासक अलकामिल और सीरिया के शासक अलमुअज्जम के बीच दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई थी कि अलकामिल अपने भाई के खिलाफ क्रूसेडरों के साथ गठबंधन करने और बदले में उन्हें यरूशलम देने को तैयार हो गया। ये मतभेद चर्च और यूरोप और यहाँ तक कि एशिया के क्रूसेडरों के लिए आकर्षक थे। दूसरी ओर अलिप्पो के सेल्जूक और मोसुल के अय्यूबियों के बीच लगातार युद्ध और संघर्ष चल रहा था और इससे क्रूसेडरों में एक और धर्मयुद्ध की तैयारी करने की प्रेरणा बढ़ सकती थी। जैसा कि हमने बताया, क्रूसेडर और खास तौर से पोप पांचवें धर्मयुद्ध में क्रूसेडरों की हार का मुख्य कारण जर्मन सम्राट फ्रेडरिक द्वारा क्रूसेडरों की मदद करने के अपने वादे के प्रति विश्वासघात को मानते थे। इस आरोप के कारण जर्मन सम्राट फ्रेडरिक को उकसाया गया कि आप छठे धर्मयुद्ध में भाग लेकर अपने इस गुनाह की भरपाई कर सकते हैं। दूसरी ओर पांचवें धर्मयुद्ध की समाप्ति के बाद फ्रेडरिक और पोप के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। یہ تناؤ اس حد تک پہنچ گیا کہ پوپ نے فریڈرک کے بائیکاٹ کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ فریڈرک نے پوپ سے معافی مانگی لیکن پوپ نے اسے سویکار نہیں کیا، اس لیے فریڈرک نے بھی اپرتیاکش روپ سے پوپ کے خلاف لڑائی شروع کر دی۔ اتیت کے وپریت فریڈرک نے یروشلم پر قبضہ کرنے کے لیے ایشیا جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر وہ جیت جاتا تو لوگوں کے بیچ اس کی لوک پریتا بڑھ سکتی تھی۔ دوسری اور یہ ابھیان پوپ کے خلاف ایک پرکار کی لڑائی اور ان کی اپیکشا تھی، کیونکہ پوپ نے فریڈرک کا بائیکاٹ کر کے یروشلم کو آزاد کرانے کے کسی بھی کاریہ کے لیے ایوگیا گھوشت کر دیا تھا۔ اس لیے جب فریڈرک نے پورب کی اور ابھیان پر جانے کا فیصلہ کیا تو پوپ نے اس میں کوئی روچی نہیں دکھائی۔ چرچ کی نظر میں فریڈرک ایک بہشکرت ویکتی تھا، اور جب تک چرچ اسے شمع نہیں کر دیتا اس کا کاریہ ارتھات دھرم یدھوں میں بھاگ لینا سویکاریہ نہیں تھا۔ فریڈرک ایک شکشت ویکتی تھا، وہ 6 بھاشاؤں فرینچ، جرمن، اطالوی، لیٹن، گریک اور عربی میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ درشن شاستر، چکسا، اتہاس اور انیہ وشیوں میں بھی اسے مہارت حاصل تھی، اور انتراشٹریہ معاملوں کی بھی اچھی جانکاری تھی۔ چونکہ اس کی شکشا سیسیلی دیپ پر ہوئی تھی، اس لیے وہ اسلام اور عرب سنسکرتی سے بھی کچھ حد تک پریچت تھا۔ اس دیپ کے نواسی آدھے عرب اور آدھے یونانی تھے، اس لیے اپنے گیان اور جاگرکتا کے کارن وہ ہر بات کو آنکھ موند کر سویکار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسلام جیسے انیہ دھرموں کے انویائیوں کے پرتی بہت سہشنو تھا، اور پوپ کی اندھ اگیارکاریتا کو سویکار نہیں کرتا تھا۔ ان تتھیوں کے مد نظر چھٹا دھرم یدھ یدھ جیسا بالکل نہیں لگتا تھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دھرم یدھ کے چھٹے چرن کی چرچا کریں گے۔